دیکھتے ہیں تفسیر سورۃ الانعام.
تلک حجتنا, یہ حجت تھی, یہ دلائل تھی, جو آتیناہا ابراہیم علیہ قومی, جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے, ان کو عطا کیے تھے ان کی قوم پہ. یعنی اللہ یہ ہے, پھر وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بات کرنی, جو بھی ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے, جو بھی ان کو بتایا, اپنی قوم کو جو بھی چیزیں ان کو سامنے پیش کی, وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھا دے, ہمیں بھی وہ دلائل عطا فرما دے, اس کے ذریعے ہم آگے اس کی توحید کا پیغام پہنچائیں. نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں ہم درجے بلند کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمایا تھا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا, یا اللہ کی نعمت تھی ان کے اوپر. اور اسی طرح ان ربک حکیم علیم, اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے, اس کو پتا ہے کہ کس کے درجے بلند کرنے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ان کا بیان ہے. پہلی نعمت کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے مقابلے میں دلیل دی اور پھر غالب کیا ان کو. ان کی قوم کو جواب تھوڑی دے سکی تھی, ان کے پاس سپیچلیس, ان کے پاس کیا جواب تھا اس کا. اسی لیے تو پھر آگ جلا کے کہتے ہیں ہم ابراہیم کو اس میں ڈال دیتے. تو یہ کوئی جواب ہے اس کا, تم دلیل لے کر آؤ دلیل کے جواب میں. تو جب دلیل ان کے پاس کچھ ہوتی نہیں, پھر آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی ہم مار دیں گے, دھمکیاں دینے لگتے ہیں, پھر ہم یہ کر دیں گے. اچھا پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا کی, ان کے درجات بلند کیے. اور اللہ کو پتا ہے, وہ حکمت والا علم والا, اس کو پتا ہے کون اس لائق کہہ کے اس کے درجے بلند کیے جائیں. اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے. اور پھر تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا کی, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ان کو عطا کیا ہم نے اسحاق اور یعقوب. یہ دیکھیں نا, جب ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے مشرکوں کے سامنے, جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو برملا اس کا اظہار کیا, اور پوری پوری قوم ایک طرف تھی, آپ سوچیں اکیلے ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں لوط علیہ السلام بھی ان کے اوپر تب ہی مان لے کر آئے تھے جب آگ سے وہ صحیح سلامت نکل آئے, تو کتنا بڑا معجزہ تھا. لیکن اس سے پہلے تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, کوئی قوم میں ایسا تھا ہی نہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. اب دیکھیں کیسی وہ حجتیں دے رہے ہیں کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, یہ چیز کیسے خدا ہو سکتی. یہ ہر انسان کے دل میں ایک سوال پیدا کیا نا انہوں نے, جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا, اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. تو اس ٹھہرے میں معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام تو ہلچل پیدا کرتی, یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. تو ہر دور میں لوگوں نے بت بنائے ہیں, ظاہری ہیں, کوئی مانوی ہیں, کوئی زندہ ہیں, کوئی مردہ ہیں, مگر جن کو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دیتا ہے, یہ ہر دور میں وہ للکارتی ہے. جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ سلامت اس کو رکھتا ہے نا, تو وہ ہر دور میں اسی طرح پکارتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. ایک واقعہ مجھے پتا چلا, جنہوں نے مجھے بتایا, بہت اوتھینٹک واقعہ, پاکستان کا ایک جگہ کا ہے. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی, اور یہ واقعہ کافی مشہور ہوا اس علاقے میں. آپ کو جن لوگوں کو پتا ہے جنگ وغیرہ کی طرف, وہاں پہ بہت یہ پیروں فقیروں مزاروں اور ان چیزوں کا بڑا زور ہے, اور بڑے یعنی گدی نشین اور فلاں, یہ ان کے اسی چیز کے اوپر تو یہ وہاں پہ تھرائیو کرتے ہیں نا. تو وہ پورے پورے علاقے ہی ان چیزوں کو, یعنی وہ لوگ اس چیز کے اوپر اتنا بلیف رکھتے ہیں کہ بس یہی ہیں ہمارے, سمجھ لیں کہ ایک طرح سے خدا ہی بنا لیا. تو وہاں پہ ایک معاہد قسم کا آدمی تھا جو ان کو منع کرتا رہتا تھا, بتاتا رہتا تھا. تو ایک دن نا وہ سارے گروپ ان کے پاس مل کے آ گیا, ان صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمیں ایسے کہتے رہتے ہیں اور ایسے, اور بہت ان کے ساتھ یعنی ایک طرح سے ڈیبیٹ انہوں نے شروع کر دی. تو انہوں نے بڑا ان کو سمجھایا, وہ نہیں سمجھ رہے تھے. تو انہوں نے ایک بات ان کو کہی, انہوں نے کہا اچھا اگر تم اتنے ہی سچے ہو نا, ये सारा कुछ हमारे ये जो हमारे ये बुजुर्ग है ना, इनकी वजह से सब कुछ होता है। तुम इतने सच्चे हो ना, तुम अल्लाह से कहो कि ये जो ये कपड़ा पड़ा हुआ ऐसे ही एक वहां पे कपड़ा पड़ा होता है कि इसको आग लग जाए, देखते हैं आग लग के। तो हमारे तो बुजुर्ग करें तो हो जाएगा, लेकिन तुम बताओ, तुम करके दिखाओ। अच्छा, वो ना बंदे ने उठा, उसने वुजू किया, उसने कहता है कि मैंने नफल पढ़नी शुरू कर दी, मैं सजदों में जाके जो मैंने दुआएं की कि अल्लाह आज तेरी बात है, मेरी बात नहीं है, तेरी बात है, तूने ही अपनी बात रखनी है, तूने ही इनको दिखाना है कि ये इस कपड़े को आग लग जाए और ये मान जाए। या अल्लाह मैं तुझे ही आगे करता हूँ, या अल्लाह तूने सच करके दिखाना है कि तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। अब देखें, ये कोई अंबिया की बात नहीं हो रही, ये आज के हमारे इस जमाने की बात मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि दुआएं कर करके वो उठ के बैठे हैं, तो कहते हैं थोड़ी देर में ना उस कपड़े के अंदर से धुआं निकलने शुरू हो गया, धुआं निकलने शुरू हो गया और उसको जैसे आग लग गई। तो वो जो बैठा हुआ ग्रुप था ना, अल्लाह अकबर, ये हमारी, ये मैं आपको अपने मुसलमानों की बात बता रही हूँ, वो ना सारे सज्दे में गिर गए इन साहब के सामने। उन्होंने कहा तुम क्या करने लगे, मैं तो तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि एक अल्लाह से मांगना है, तुम मेरे सामने, और मेरे से नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता, ये अल्लाह ताला ही करने वाला है। और क्या, वो मान गए इनकी बात और सारा कुछ। फिर उसके बाद वो वहां गए तो उन्होंने उनको कहा, जो इनके बड़े थे या जो, उनको थोड़ी ना जाने देते हैं अपने मुरीदों को इस तरह से हटने थोड़ी देते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम पागल हो जो इसकी बातों में आ गए, ये तो जादू है इसने जो किया, ये सारा जादू का खेल था। आज भी सोचे हैरान होती हूँ मैं कि ये वही बातें हैं, क्यों ना लोग कहते होंगे, आज हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि पैगंबर जब कोई मौजा लेकर आते थे तो वो कहते थे ये तो जादू है। आप पैगंबर तो कोई नहीं है, वो एक, वो कहता मैं तो आम सा एक इंसान हूँ, आम सा एक आदमी, मगर तौहीद पे बहुत पक्का था, अल्लाह ने उसकी बात को रख लिया, कलमा अल्लाह का ही बुलंद होना। तो आज भी अल्लाह दिखाता है, लोगों के सामने चीजें आती हैं, लेकिन जिसने नहीं मानना तो नहीं मानते, फिर कहते वो वही है, उसी तरफ होगा। तो अल्लाह अकबर, ये कशमकश जो हक और बातिल की है ना, ये हर जमाने में रही है, और हर जमाने में लोग खड़े होते रहे हैं हक के लिए, और रहती दुनिया तक ऐसा रहेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने अता किया इसहाक और याकूब, जब उन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए इतने मराहिल से गुजरे, हर तरह से अल्लाह ने उनको आजमाया, घर वतन खानदान रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया एक अल्लाह की वहदानियत को बयान करने के लिए। तो अल्लाह ने महरूम नहीं रखा इस दुनिया में भी, याद रखें। आप कोई कुर्बानी देते ना, आज आपको लगता है मैं कोई चीज छोड़ दूंगी, हाय मेरा क्या बनेगा, हमारा क्या होगा, हम खाएंगे कहाँ से, हम पिएंगे कहाँ से, हमारा बनेगा क्या, नहीं, वो अल्लाह रखता नहीं है किसी का। अल्लाह, उन्होंने अपना वतन छोड़ा ना, अल्लाह ने उनको बशारत दी उस वक्त जब बूढ़े हो गए थे, और यानी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी कि कोई औलाद हो सकती है, उस वक्त उनको किसकी बशारत दी, सिर्फ बेटे की नहीं, नबी बेटे की, और सिर्फ बेटे की नहीं, पोते की भी, कि आप पोता भी देखेंगे, और वो भी सिर्फ पोता नहीं। इंसान कहता है जब औलाद पैदा होती है सबसे पहले ये फिक्र पड़ जाती है अल्लाह नेक हो, वो तो ये भी बता दिया गया, वो तो नेक क्या, वो तो अल्लाह ने उनको चुन लिया, वो तो नबी होंगे, और इससे क्या बड़ी बात हो सकती कि अल्लाह ने फिर आगे नबुवत का सिलसिला जो चलाया वो सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही चलाया, और बाहर से कोई नबी आया ही नहीं। कितनी बड़ी सआदत है, रहती दुनिया तक आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हर मजहब के लोग उनको उनकी ताजीम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। किसको पता है उन लोगों का जो वहां पे गुजरे, जिन्होंने आग में जो है ना लकड़ियां लाके डाली, जमा की, जिन्होंने ताने दिए, जिन्होंने शिर्क किए, उनको आज कौन जानता है। लेकिन जो तौहीद के लिए खड़ा हुआ, उसको अल्लाह ने देखो कैसे उसको जिंदा रखा कि कुरान में उसका जिक्र कर दिया। आप क्रिश्चियन से पूछ लें, यहूदियों से पूछ लें, सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं। इस तरह अल्लाह कदरदानी करता है, अल्लाह की कदरदानी आप देखेंगे ना तो सुबहान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत बहुत मुसाइब उठाए, लेकिन अल्लाह तआला ने फरमाने वा रफअना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र ही बुलंद कर दिया। अल्लाह सौफ यौती का रब्बू का फतरद, अल्लाह आपको इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। रब फरमा रहा है तो और क्या रह गया, सारी महरूमियां पर पीछे रह जाती। तो रब के रास्ते में ना कुछ देते हुए ना दिल थोड़ा ना किया करें, डरा ना करें, झिझका ना करें, पता नहीं क्या हो जाना है, वो मैंने दे दिया तो मेरा ना कम हो जाए, वो मैंने कुछ कह दिया तो ये ना हो जाए। जिस रब का आप कलमा पढ़ते हो ना, वो आपको देखना कैसे थामेगा, और वो तो इतना अता करेगा, आप कहेंगे ये मैंने जो छोड़ा था मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझे क्या कुछ नहीं मिल गया इसके मुकाबले। भरोसा, जो जो अल्लाह पे भरोसा करती है ना उनको फिर अल्लाह बड़ा नवाजता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट हिम, मैंने जो किया वो कुछ नहीं है, अल्लाह जो मुझे देगा ना वो बहुत है, मैंने क्या किया। तो अल्लाह फिर अता जब करता है ना तो उसके खजाने लामहदूद है। हम छोटी एफर्ट कर सकते, क्या हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें ही है ना, लेकिन जब अल्लाह ताला रहमतों की बारिश करता है तो बेहिसाब होती है। अल्लाह हमें उनमें शामिल करें जो दलेर होके उसके रास्ते में खड़े होने वाले हों, जो बहादुरी के साथ उसका कलमा बुलंद करने वाले हों। कुल्लन हदीना, तो सबको फरमाया हमने हिदायत दी, चाहे वो इब्राहिम अलैहि सलाम हो, इसहाक अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम, वो नूहन हदीना मिन कबल, और नूह अलैहि सलाम को इनसे पहले, इब्राहिम अलैहि सलाम से भी पहले नूह अलैहि सलाम को भी हमने ही दाद दी थी, और मिन जुर्रियत ही, और उसकी औलाद में से, किसकी औलाद में से, बाज कहते हैं नूह अलैहि सलाम की तरफ इशारा है कि उनकी औलाद में से, क्योंकि पीछे नूह अलैहि सलाम का जिक्र आ रहा है, बाज कहते हैं नहीं पूरे ओवरऑल इब्राहिम अलैहि सलाम की बात चल रही है तो उनकी औलाद का जिक्र है, तो दोनों हो सकते कि वो मिन जुर्रियत ही, लेकिन ज्यादा ये है कि इब्राहिम अलैहि सलाम की बात है, क्योंकि देखिए पूरा कॉन्टेक्स्ट उन्हीं का चल रहा है, उनकी औलाद में से दाऊद अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम, अय्यूब अलैहि सलाम, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहि सलाम, देखिए कितने बड़े बड़े पैगंबरों की बातें आ रही हैं, ये इतने जलीलुल कदर पैगंबर, इन सबको हमने हिदायत दी, ये सब इब्राहिम अलैहि सलाम की जुर्रियत में शामिल थे, और इनमें वकदालिक नजिल मोहसिनीन, पहले मैं पूरी पढ़ लूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसी तरह हम जजा देते हैं मोहसिनीन को, एहसान करने वालों को, जो हक से भी बढ़ती करने वाले हो, यानी एक तो चीज होती है ना कि बस आपने फराइज ही अदा किए, एक है कि उससे भी आगे बढ़ के नवाफिल अदा करना, हर चीज को, हर इबादत को खूबसूरती के साथ करना। तो देखें कहाँ तक नेकी का बदला गया, कहाँ तक आप सोच सकते हैं, इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपनी कौम छोड़ी और आजमाइशों से गुजरे, और जब आजमाइशों में पूरे उतरे तो अल्लाह ने नेकी का वो सिलसिला, वो चेन शुरू कर दी कि कितने अंबिया का जिक्र, और सारे उनकी नस्ल में से, व जकरिया, व यहया, व ईसा, व इलियास, बाकियों का तो आपको पता है, इलियास अलैहि सलाम के बारे में आता है बाज़ जगह पे कि ये यसा के जो थे खलीफा थे, बाज़ जगह पे आता है कि इनका जिक्र सूरह सौद में भी है, ये बनी इसराइल के अंबिया में से हैं, और बाज कहते हैं कि ये लकब था इनका, असल नाम कुछ और था, बाहर कैफ ये भी एक नबी थे जो बनी इसराइल में आए, कुल्लु मिन सोलेहीन, सब के सब नेक लोगों में से थे, व इस्माइला व यसा, यानी इनकी मैं बात आपको बता रही थी यसा की, व यूनुस व लूत व कुल्लन फद्दलना आलमीन, और सब के सबको हमने फजीलत दी तमाम जहानों पे। अब इनमें लूत अलैहि सलाम के बारे में जो उलमा कहते हैं कि देखिए लूत अलैहि सलाम तो उनके बेटे नहीं थे, वो तो भतीजे थे इब्राहिम अलैहि सलाम के, तो इनका जिक्र क्यों यहाँ पे आया, तो असल में बात ये है कि जब कोई भतीजा भी होता है तो वो भी इसी तरह है कि जैसे बेटा है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने, देखें आपने सूरह बकरा में पहले पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने याकूब अलैहि सलाम, जब उनका जिक्र फरमाया कि जब उनको मौत आ रही थी तो फिर उस वक्त उन्होंने अपने बेटों से पूछा था कि तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा था नाबुदु इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक का, कि हमारे जो आबा इस्माइल और इसहाक और इब्राहिम है, तो उनके आबा तो जो थे वो इस्माइल अलैहि सलाम थोड़ी थे, ये तो इसहाक अलैहि सलाम की اولاد یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ ہے جن سے وہ پوچھ رہے ہیں، تو ان کے تو وہ چچا لگتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے آبا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چچا بھی باپ کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اب وہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جبکہ ان کے تو باپ ہی نہیں تھے، ان کی تو صرف ماں تھی. تو اس سے یہاں علماء کہتے ہیں کہ جو بیٹی کی اولاد ہے نا وہ بھی اولاد ہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کہلاتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو لے کر آئے اور ان کو ممبر پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا. اسی طرح جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ بات کی تھی سورہ آل عمران میں مباہلا کی بات کی تھی کہ نجران کے عیسائی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی کہ آپ ان کے ساتھ مباہلا ہوا تھا، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خاندان کو لے کے نکلے تھے نا، کیونکہ آیت تھی کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، تو اپنے آؤ اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنی اولاد کو بلا لو، اپنی عورتوں کو، اور اس طرح سے پوری آیت ہے. تو اس کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اور اپنے نواسوں کو لے کر نکلے تھے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی انسان کی اولاد ہی کہلاتی ہے، اولاد میں داخل ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جو پوتے ہیں پوتیاں وہی اولاد ہیں، نواسے نواسیاں کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بھی اولاد ہیں. اور اس کی دلیل علماء کہاں سے لیتے ہیں؟ یہاں سے لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حالانکہ وہ بیٹی کی اولاد ہیں، حضرت مریم کی اولاد ہیں، لیکن ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا گیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کے اندر اب یہ کیا سیکوینس بن رہا ہے نا، اب یہ بڑی اچھی امام راضی نے اس کے بارے میں وجہ بتائی ہے کہ کس طرح کس سیکوینس کے اندر ان کے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی ہوگا نا سیکوینس کی یہ ساری شخصیات ہیں، کسی کا پہلے نام آیا، کسی کا بعد میں آیا، کرونالوجیکل آرڈر تو نہیں ہے اس کے اندر کہ تاریخ میں کون کون پہلے آیا اور کون بعد میں آیا، وہ تاریخ والا آرڈر نہیں ہے. جس طرح یعنی ان کی جو ان کے ٹائمز تھے اس کے مطابق نہیں ہے یہاں پہ ذکر. تو پھر کس طرح سے ذکر کیا گیا؟ تو ایک وجہ جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو ذکر آیا نا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کے اوپر ہوئی سب سے زیادہ. تو سب سے پہلے ان کا ذکر آیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک حکومت پوری بادشاہت دی تھی، وہ ایک عظیم نعمت تھی. پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ایوب علیہ السلام مصائب میں صبر اور ثابت قدم رہنے والے آزمائش میں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، وہ ان دونوں نعمتوں کے پانے والے تھے، انہوں نے سخت مصائب بھی برداشت کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک اور سلطنت بھی دیا. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پر نعمتوں کا دوسرا سلسلہ ہے، اور وہ ہے کہ معجزات کن کے پاس زیادہ آئے اور دلائل اور برہان کن کے پاس زیادہ آئی، قوت جو معجزوں کی تھی، اور وہ ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، کہ ان کو یہ نعمت عطا کی گئی. تو نعمتوں کے مطابق یعنی یہاں پہ تو ان کا ذکر آیا. اس کے علاوہ نعمت کی ایک اور قسم ہے کہ دنیا سے ترک تعلق، یہ جو زاہدانہ زندگی گزارنا ہے وہ، اور اس میں زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان کو یہ نعمت ملی تھی، تو ان کا ذکر اکٹھے آیا. آپ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین کا وصف عطا فرمایا کہ وہ صالحین میں سے تھے. اس کے بعد ایک اور انبیاء علیہ السلام کی ایک اور کیٹیگری ہے جن کے دنیا میں پیروکار باقی نہیں رہے، اور وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس اور لوط علیہ السلام. تو یہ ایک یعنی انہوں نے کہا کہ کیا سیکوینس بن رہا ہے اس کے اندر، وہ آپ کے رس کے لیے کہ آپ کو پتا چلے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ہم نے ہدایت دی جنت کے راستوں کی طرف، یعنی ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نوازی. وہ کلن فضلنا علی العالمین، اور سب کے سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. और इससे उलमा कहते हैं कि अंबिया अलैहिम सलाम इसका मतलब मलाइका से भी अफजल है, क्योंकि आलम का लफ्ज अल्लाह के सिवा हर चीज को शामिल करता है, तो मलाइका भी आलमीन में है, तो सब जितने भी मखलूकात हैं उनके अंदर इनको फजीलत है। अब ये एक सवाल आ जाता है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम पे भी इनकी फजीलत थी? तो नहीं, ये अपने अपने जमानों में तमाम जहान वालों पे इनको फजीलत थी। ठीक है, और आप देखते हैं कि इनमें कितने सारे अंबिया का जिक्र आया, और आगे अभी बात आती है वह मिन आबाइहिम व दुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम, और इनके आबाओ अजदाद में से, उनकी औलाद में से, इनके भाइयों में से, वजतबईनाहुम हमने चुन लिया उनको और हिदायत दी उनको, इला सिराते मुस्तकीम। ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत होती है कि अल्लाह ताला किसी की जुर्रियत को, उसके भाई बंदों को, उसके आबा को चुन ले अपने काम के लिए। चुन लिया कोई माल और दौलत देने के लिए नहीं बात हो रही, अल्लाह ताला ने उनको अपने काम का बना लिया कि अल्लाह के दीन की तरफ रहनुमाई करें। क्योंकि देखिए थोड़े ही अंबिया का यहाँ पे भी जिक्र आया है, लेकिन बहुत इसके अलावा भी अंबिया आए। अब एक बात और यहाँ पे हमें पता चलती है जो आगे आ रही है, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, ये हिदायत है अल्लाह की, वो हिदायत देता है साथ इसके जिसको वो चाहता है अपने बंदों में से। देखिए अल्लाह ताला से इसीलिए हिदायत मांगने का कहा गया, हुक्म दिया गया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में है, सिर्फ वो जिसको चाहे हिदायत अता फरमा। और ये हिदायत किस चीज की हिदायत है? तौहीद की, हर किस्म के शिर्क से अपने आप को पाक करने की, इखलास की, अल्लाह की इताअत में, उसकी इबादत में इखलास, प्योर प्योर होना, ये हिदायत थी जिसको अल्लाह ने इनको अता फरमाया और जिसको चाहे अल्लाह अता फरमा दे। तो हिदायत के दरवाजे बंद नहीं हुए कि इनको ही सिर्फ मिली, अब इसके बाद किसी को नहीं मिली। नहीं, हिदायत मांगे अल्लाह से, उन सारी दुआओं में इस दुआ को मुकद्दम कर दिया गया। हर दुआ बाद में, सबसे ज्यादा हम नमाज में ए दिन सिरातल मुस्तकीम देखे, दिन में कितनी दफा मांगते हैं। वलो अशराकू, अब ये है जो स्वीपिंग स्टेटमेंट जिसको कह सकते हैं, वलो अशराकू, अगर वो सब शिर्क करते, कौन, ये जो जिन 18 अंबिया का जिक्र आ गया, लहबित अनहुम कानू यअमलून, अलबत्ता जाया हो जाते उनसे जो भी वो अमल करते थे। अगर ये भी शिर्क करते, इससे क्या हमें पता चलता है कि इतने बड़े पैगंबर जिनके जिक्र यहाँ पे आ रहे हैं, और आप सबको इनके बारे में मालूमात है, कि ये भी अगर शिर्क करते तो ये भी ना बच पाते, इनकी भी सारी नेकियां जीरो हो जाती। तो हम फिर क्या है? इन्होंने शिर्क नहीं करना था, मगर अल्लाह ताला ने इनका नाम लेके हम सबको ये वॉर्न कर दिया कि शिर्क इतनी बुरी चीज है, तुम किस खेत की मूली हो, ये शिर्क करते तो ये भी ना बच पाते, तो तुम कैसे बचोगे शिर्क करके? और तुम समझते हो कि शिर्क करने के बाद कोई बच सकता है, तो अव्वलीन तो फिर यही बच जाते जो इतनी नेकियां करने वाले। वो लोग बहुत सारे कहते हैं ना कि देखें जी फलां इतनी नेकियां करता है, क्या हो गया अगर उसने शिर्क कर लिया? उसने तो अस्पताल बनाए, उसने यतीम खाने बनाए, उसने फलां कर दिया, कितने उनकी लिस्ट होती है अच्छे कामों की, मगर वो सारे अच्छे काम दुनिया के लिए अच्छे हैं, आखरत में उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर शिर्क है जिंदगी में, इतने बड़ी सेलिब्रिटीज शिर्क करते तो वो बच नहीं सकते थे, उन्होंने ना शिर्क किया ना वो करने वाले थे, मगर बताना जरूरी है इसलिए ताकि सबको समझ आ जाए कि शिर्क क्या चीज है। अगर वो नहीं बच सकते तो हम अपने आप को फिर कैसे सोच सकते हैं कि हम शिर्क भी करेंगे कोई हमें बचा लेगा? हाँ कोई बात नहीं, अगर इतना सा भी हो गया तो क्या हो गया, इतनी भी बड़ी बात नहीं है ये, तो वो कैसे, वो तो इतने अच्छे हैं, हमसे तो वो अच्छे हैं, हम तो ये बुरे काम करते हैं, जो भी कोई बुरा काम करता है। मगर शिर्क जुल्मुन आजीम है, सबसे बड़ा गुना है, गुनाहों में कबीरा गुना है, उससे करने के बाद कोई बच नहीं सकता अगर उसके साथ मर गया तो। ये बात समझ आ गई अच्छी तरह? तो अब कोई ये आर्ग्यू नहीं कर सकता, नहीं जी वो तो इतने नेक है, नहीं जी वो तो इतने अच्छे हैं, क्या हो गया अगर वो क्रिश्चियन है, वो ईसा अलैहि सलाम खुदा का बेटा कहते हैं, तो कोई मसला नहीं है आपके लिए, आपके लिए ना होगा, लेकिन शिर्क इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया। आप समझ आ गई ना? आप जैसे कोई अपने लाडले का भी कह देना कि अगर ये भी, माँ का लाडला बच्चा हो, कहे कि ये भी अगर ये काम कर लेगा तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, तो बाकी बच्चे तो वैसे ही डर जाएंगे, अगर लाडले का ये हाल होगा तो फिर हमारा क्या होगा। ये है वो अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह के बरगजीदा, सारी मखलूक में सबसे अफजल, उनको भी अल्लाह ताला ने स्पेयर नहीं किया कि कोई बात नहीं। तो ये कोई बात नहीं वाली बात नहीं है शिर्क जो है। उलाइक अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने किताब दी, हिकमत दी, नबुव्वत दी। किताबें नहीं, किताबों से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफे दिए, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, और हुक्म से मुराद यानी अल्लाह ताला ने जो अहकाम उतारे ना, उनकी समझ दी, उनकी पहचान दी, उनके उनकी मार्फत अता फरमाई। और नबुवत तो आप सब समझते हैं, नबुवत भी अल्लाह ताला ने उनको अता की। फइन यकफुर बिहा हाउलाई फकद वक्कलना बिहा कौमुन लैसू बिहा बिकाफिरीन, फिर अगर वो कुफर करते इसका ये लोग, तो तहकीक मुकर्र कर दिया हमने साथ इसके कौम को जो नहीं इसके साथ इनकार करने वाले। यानी फिर पता है कि अगर अहले मक्का ने इन आयात को कुफर किया, तो इन आयात पर ईमान लाने के लिए अल्लाह ने एक और कौम को चुन लिया है जो फिर इसका इनकार नहीं करेंगे। यानी अगर ये इनकार करते ना, अहले मक्का की तरफ इशारा, फिर अगर यकफुर बिहा, अगर ये कुफर करते हैं इसका, अब ये सारी बातें बता के फिर भी ये अगर नहीं मानते ना, तो ठीक है फिर अल्लाह ताला कोई और कौम है जिसको अल्लाह ने मुकर कर दिया। तो मुफस्सरीन कहते हैं इस कौम से मुराद है अहले मदीना, अंसार, तुम नहीं मानते, अल्लाह के पास और लोग हैं। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, याद रखें। उसके दीन के काम के लिए, उसकी तौहीद को बताने के लिए, वो उसके दीन की खिदमत के लिए, कोई ये नहीं कि कोई नखरे कर रहा है तो अल्लाह को कोई मोहताजी नहीं कि यही रह गया, सिर्फ कोई और लोग अल्लाह ले आता। अब मक्का के लोग अपने आप को तो बहुत बड़ी चीज समझते थे ना, वो बहुत प्राउड थे इस पे, मदीना वालों को वो क्या समझते थे, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ठीक है, अगर नहीं तुम नहीं मानते तो कोई मसला नहीं, कोई और लोग हैं उनको अल्लाह उठा दे। और फिर देखे वो कैसे उठे। आज अगर मदीना की कोई वैल्यू है ना दुनिया के अंदर, वो सिर्फ इसलिए है कि वो लोग हैं और वो जगह है जिसने हमारे नबी को वेलकम किया था, वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार बन गए थे, आपके साथ खड़े हो गए थे। इसलिए ऐसे नहीं था कि उन लोगों को उस जमाने में कोई खूबी हासिल थी, ये उन अंसार बनने की वजह से मिली उनको। फिर अल्लाह ऐसे कदरदानी करता है। बार बार समझ आ रही है ना, जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देता है, जो अल्लाह के रास्ते में कुछ भी करता है, अपना कुछ लगाता है, वो फकीर नहीं रह जाता। अल्लाह ताला फिर कैसे थामता है उसको, कितना नवाजता, रहती दुनिया तक लोग अंसारे मदीना की तारीफें करते रहेंगे। तो ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में तशरीफ लाने से पहले ईमान लेकर आ गए थे। तुम नहीं मानते तो ना मान, तो उन नुकसान किसका हुआ? और कुरैश ने आयात को नहीं माना, तकलीफ की, तो उससे पहले ही कोई और लोग अल्लाह ने उठा दिए।